अगला फितना भी देख लेते हैं। फितनतुल कज्जाबीन व दज्जालीन पेज नंबर 145 है। झूठे और फरेबी पेशवाओं का फितना। ये कौन लोग हैं जो झूठी नबुवत के दावे करेंगे, इसी तरह लीडर बनेंगे लेकिन वो होंगे नहीं। कोई दज्जाल होने का दावा करेगा तो कोई मेहदी होने का दावा करेगा। हम इस मौजू को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बात वाजे होगी। क्यामत से पहले नबुवत के 30 झूठे दावेदार पैदा होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यामत से पहले 30 धोखेबाज झूठे आदमी पैदा होंगे। इनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। नाउज़ुबिल्लाह। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। देखिए, अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं। सूरह अल अहज़ाब में आता है खातिमुन नबीय, यानी आप नबियों के ऊपर एक सील थे, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह के नबी की जिंदगी में भी एक शख्स ने दावा कर दिया था, मुसलमा कज़ाब, अस्वद अंसी, सुजा नाम की एक औरत थी, सजा नाम की। इन्होंने नबूवत के दावे किए। तो हर थोड़े तरसे में आपको ऐसी खबरें तो मिलती हैं ना। और माजी बईद नहीं, करीब की बात है कि एक शख्स ने गुलाम अहमद कादियानी के नाम पे नबूवत का दावा किया। तो ये सारे फितने क़यामत की दलील है। और रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से, रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल पैदा होंगे और इनमें से हर एक अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधेगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। और जब वज़ाहत में लिखते हैं कि 30 झूठे नबी वो होंगे जो पूरी उम्मत में मशहूर होंगे, जो गैर मारूफ होंगे वो इनके अलावा होंगे, और एक झूठा नबूवत का दावेदार नबी सल्लम के ज़माने में पैदा हुआ था जिसका नाम मुसैलमा था। क़यामत से पहले मुसलमानों को गुमराह करने वाले झूठे और फरेबी मजहबी पेशवाओं, सियासी लीडरों और रहनुमाओं की तादाद बेशुमार होगी। रिवायत है अब्दुल्ला बिन उमर से, कहते हैं कि वल्लाही मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, क़यामत से पहले मसीह दज्जाल जाहिर होगा और 30 झूठे होंगे या इससे भी ज्यादा। यह अहमद की रिवायत है। और जाबिर बिन समूरा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि क़यामत से पहले बहुत से झूठे पैदा होंगे, इनसे बचकर रहना। अब आप ये सारी चीज़ों को जमा करें और आज के दौर के कुछ ऐसे चेहरे जो हमें मीडिया पे भी देखते हैं, और कहीं कहीं तो मज़हब के नाम पे लोगों को गुमराह किया, फौजों की फौजें लोगों की जो हैं वो लोगों के नाम पे गुमराह हुई हुई हैं। मैं और आप इसके लिए क्या करें? यानी अब ये ब्राह रास्त मेरे और आपके अमल से नहीं मुतल्लिक, क्योंकि हम में से अल्लाह ना करे किसी ने ये नहीं किया हुआ, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम इस फितने से कैसे बचें। तो इसका तरीक़ाकार क्या है कि हम इल्म हासिल करें। अल्लाह के नबी सल्लम कैसे थे, नबूवत की क्या अलामतें हैं, और जब सही चीज़ का इल्म होता है तो गलत चीज़ से बंदा बचता है। कभी आपने कोई प्रोडक्ट देखा होगा तो उसके लॉन्च करने वाले क्या कहते हैं, नक्कालों से होशियार रहिए कहते हैं ना। मतलब क्या होता है कि झूठी कॉपियां जो करते हैं उनको, तो किसी चीज़ की असल है या नकल है उसके लिए हमें क्या चाहिए, असल का इल्म चाहिए। तो कुरान और हदीस का इल्म जब होगा तो हम ऐसी तमाम चीज़ों से बच के रहेंगे। अगला फितना है औरतों की हुक्मरानी का फितना। फितनतुल इमारतिल मरअती, यानी क़यामत के करीब औरतें हुक्मरान हो जाएंगी। औरत का हुक्मरान बनना क़यामत के फितनों में से एक फितना है। हजरत अबू बकरा रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं, याद रखिए कि ये अबू बकर नहीं है, बहुत सारे लोग इनको अबू बकर कहते हैं, अबी बकरा कहते हैं कि जंगे जमल के मौके पर अल्लाह ताला ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात से बहुत फ़ायदा पहुंचाया, जो आपने उस वक्त इरशाद फरमाई जब आपको मालूम हुआ कि ईरानियों ने किसरा की बेटी को अपना बादशाह बना लिया है। आपने इरशाद फरमाया, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जो औरत को अपना हाकिम बना ले। इसे बुखारी ने रिवायत किया। और अगर आप सही बुखारी देखें ना, तो इमाम बुखारी और दूसरे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को किताबुल फितन में शामिल किया। अब इसको समझिए, अब देखिए कि किसरा मुल्क, किसरा ईरान, जो ईरानी बादशाह होते थे ना उनका लकब था, नॉन मुस्लिम मुल्क था, और उसकी हुक्मरान एक औरत बनी, तो अल्लाह के नबी को अच्छा नहीं लगा। तो कहाँ फिर मुसलमानों की वजीर आज़म, मुसलमानों की कि औरत मुसलमान बन जाए, कोई मलका आगे आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अब आपके जहनों में सवाल होगा कि आज भी हम दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे देखते हैं कि वहाँ मलका है बादशाह नहीं, तो फिर तो वहाँ बड़ा अमन और चैन है। अमन चैन का ज़ाहरी तौर पे होना और दिखता है, बातनी तौर पे और। मैं और आप इसको अपने लेवल पे ले सकते हैं। ठीक है, हम किसी मुल्क की मलका तो नहीं हो सकती, लेकिन बाज़ औक़ात औरतें बहुत डोमिनेंट होती हैं। अल्लाह ताला ने घर का निज़ाम कैसे चलाया कि मर्द का अपर हैंड है, एक दर्जा मर्द के ऊपर है। अमूमी तौर पे तो घर जो होते हैं ना, वो मुवाफ़क़त से चलते हैं, कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, बैलेंस करके होता है कि जिसमें मशवरे के साथ काम हो, कोई किसी पे इम्पोज ना करे। लेकिन जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो मर्द को रिसॉल्व करना चाहिए, बस इतनी सी बात समझे। फिर सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। अमूमन मर्द स्ट्रांग होते हैं, कुव्वत फैसला ज़्यादा होती है, इमोशनल नहीं होते। इसके बरक्स औरतों में ये सब कुछ ही कम होता। चूहा देख के तो डर जाती हैं, बिल्ली देख के तो उनको खौफ आने लगता है, घर में चोर आ जाए तो औरत का हाल क्या होता है। लेकिन मर्द अमूमन मजबूत होते हैं, वजन उठाना पड़े तो हम किनको बुलाते हैं, मर्दों को बुलाते हैं ना। तो अल्लाह ने मर्दों को ज़हनी तौर पर मिच्योर किया होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी, अब आप माइंड ना करें, आज हमारे तरीक़े तरबियत में वो सोच नहीं रही कि हम बेटों को स्ट्रांग जहन दे के पैदा करें। 12-18 साल के भी बच्चे हो जाते हैं तो माएँ और उनके ऊपर ज़रा सा बोझ नहीं डालती। फितरी तौर पे अगर आप अपने बच्चों को पालेंगी ना, तो मर्दों को ब्रेव बनाना चाहिए, स्ट्रांग, हैवी, वो बाहर के काम करें, वो वजन उठाएं, वो जहनी काम करें। और बेटियों को हया के साथ छुपा के घरों में रखते हुए पालना चाहिए। आज हम देखते हैं पूरा मुआशरा ही लड़की लड़के की एक जैसी तरबियत कर रहा है। तो आज देखिए लड़कियां जो हैं वो लड़कियों से भी ज्यादा नाजुक हैं, और लड़कियां बाज दफा बोल्ड हो जाती हैं। तो ये इस वक्त के जो हालात है ना, ये आइडियल नहीं है। तरबियत ठीक नहीं होती तो इसमें आपको लगता है कि कई जगह औरतें मर्दों से भी ज्यादा आगे निकलती हैं, बल्कि आप देखें तो फितरत का असूल है कि जितनी प्रोडक्टिविटी है वो सारी औरत के हाथ में। बच्चा पैदा औरत करती है, मर्द नहीं करता। आगे इंशाल्लाह आप क्लास में सूरत नहल पढ़ेंगे। शहद की मक्खियां जो शहद बनाती हैं वो फीमेल है। चींटी देख लीजिए, सारे अच्छे अच्छे काम अल्लाह ने औरतों के हाथ में रखे हुए हैं, तो ये कॉर्नर है अल्लाह ने दिए। तो बहरहाल ये है कि जहां भी आपको मौका पड़े कि लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, आपकी बात 100% ठीक है, दबा लीजिए। औरत कभी मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती, और अच्छी औरतें करती भी नहीं है। उनको पता होता है हम ठीक है, अल्लाह हमें इसका बदला देगा, हम आजीज हो जाते हैं। अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी रिवायत है कि जिसने झगड़े से बचते हुए आजजी इख्तियार की, मन तवादा लिल्लाही, आजजी हम्बल, तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बढ़ा देगा। तो अच्छी बच्चियां जो होती हैं वो मुकाबले नहीं करती, मुंह दर मुंह बात नहीं करती, ताने नहीं देती कि अच्छा भाई का मैंने क्या, बाप करे, अब ये मैंने कह दिया, मेरी माँ ने, अब आपकी माँ ने, नहीं, बराबरी पे नहीं आती। लेकिन आज आप देखिए इतनी डाइवोर्सेस क्यों हो रही हैं, तरबियत का अंदाज बदल गया। वो कहती हम क्यों दबे। यकीन करें कि एक क्लास थी तो मैंने उसमें ऐसे घरेलू टिप्स देती थी, घर और कुरान साथ साथ उस कोर्स का थीम था। तो हर वीक में एक दफ़ा एक टिप देती थी स्टूडेंट्स को कि आज आपने इस पूरे वीक में इस पे गौर करना है। तो एक मैंने उनको टिप दे दी एक दिन क्लास को, मैंने कहा चार जाके आपने अपने हस्बैंड से सिर्फ इतना कहना है, थैंक यू फॉर मैरिंग मी, आपका बहुत शुक्रिया मुझसे शादी करने पर। यकीन करें क्लास का जो रिएक्शन था, एक दो तो वहीं बैठ पड़े, हम क्यों उनका शुक्रिया अदा करें, वो क्यों नहीं हमारा करें, हमने नहीं शादी की उनसे, ये हालात होते हैं। एक ने कहा मैं तो नहीं कह सकती, मैं क्यों कहूँ। तो फिर उसके बाद वो पूरे वीक के बाद जब अगले वीक अपना डिस्कशन करते हैं तो इतने दिलचस्प किस्म के मतलब कमेंट सामने आए कि मर्द भी हैरान थे कि ये तुम कहाँ जा रही हो कि तुम्हें आज इतने साल बाद ये ख्याल आ गया कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। तो क्या फर्क पड़ता है, कर दें खुश, आप जितना झुकेंगे अल्लाह आपको उतनी इज्जत देगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला आपको खैर देगा। अब इस पे कोई सवाल है जहनों में तो पूछ लें, इससे पहले कि अगले फितने में आप पड़ जाएं।
हमें भी होमवर्क दे देंगे।
फिर कोई एक सवाल देती हूँ, पूछ के बताइएगा। मैं अपने हस्बैंड से बहुत दफा वैसे पूछ चुकी हूँ, मेरे से भी जवाब अगले वीक ले लीजिएगा। लिखिए जरा आप सब, यानी आपकी शादियों कब जा रहा है, किसी के 5, 10, 20, 25 साल हो गया है ना, हर एक अपने हिसाब से इसका जवाब ले लेगा। अपने हस्बैंड से ये पूछिए, मेरे साथ रहने के बाद अब आपको मेरा सब कुछ पता चल गया। छुपता तो नहीं है ना, आते नहीं छुपती, बंदा झूठा प्रोटोकॉल कितने दिन कर सकता है, आते नेचर फितरत तो भी सब खुलती है। अब जबकि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया, अगर ये सब बातें आपको शादी से पहले पता होती तो क्या आप मुझसे शादी करते। इनको तो जवाब अभी पता है कि वो कहेंगे नहीं। अच्छा, अगर शौहर साहब ने आगे से ही पूछ लिया तो क्या होगा।
हम भी कहते हैं नहीं
आप भी नहीं
नहीं मैं तो कहती आपसे मैं तो कहती सारा जी सारी बोलूं
जी बोल रहे हैं पहले आप पूछ नहीं रहे हैं पहले बोल रहे हैं एक दफा हम कहीं दर्स में थे तो ऐसी कोई बात हो रही थी जन्नत पे मौजूद था ये सिर्फ मैं आपको रिलैक्स करने के लिए सुना रही हूँ कि चलें आपको ये ना लगे कि हम क्लास में तो एक दर्स था तो वहाँ जन्नत की बात हो रही थी तो यही बता रही थी कि जो दुनिया के अच्छे जोड़े हैं वो वहाँ भी जन्नत में भी साथ होंगे और जो यहाँ अच्छे मर्द नहीं हैं उनको वहाँ अच्छी बीवियाँ मिले इस तरह की कोई बात हो रही थी तो मैंने अपने हिसाब से बोल दी अपने दिल की बात मैंने कहा कि वैसे सच्ची बात है कि कोई मुसलमान औरत तो ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि जन्नत में मुझे मेरा शौहर ना मिले ना तो पीछे से एक अम्मा जी बैठी थी कहती ना जी मैं ते बदलना है मैंने बड़ा सब्र किया तो वो उनका एक्सपीरियंस था मतलब वो बेचारी सब्र कर रही है कि अब दुनिया में तो बाबा जी के साथ मैं रह रही हूँ वहां जाके मैं बदल देखिए ये वो रिश्ता है कि जिसमें मोहब्बत भी सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ भी सबसे ज्यादा गिले शिकवे भी सबसे ज्यादा तो बहरहाल ये कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अच्छी बीवियां बनने की तौफीक दे अगला फितना देख लेते हैं गुमराह करने वाले हुक्मरानों का फितना फितनतुल आइमतिल मुदिल्लीन गुमराह करने वाले हुक्मरानों का फितना क़यामत से पहले ऐसे गुमराह लोग हुक्मरान बनेंगे जो बड़े बड़े फितने पैदा करेंगे सच आज ऐसे है ना मसले रिवायत है हजरत शद्दाद बिन औस की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के बारे में गुमराह करने वाले हुक्मरानों से बहुत डरता हूँ कि वो उम्मत को फितनों में मुब्तला कर देंगे मेरी उम्मत में एक दफ़ा जब तलवार निकल आई तो क़यामत तक म्यान में नहीं जाएगी यानी मुसलसल खून रेजी होती रहेगी इसे अहमद अरबज़ार ने रिवायत किया देखिए बाज़ दफ़ा बहुत सारी जगहों पर हंगामों और लड़ाइयों की वजह हुक्मरान खुद होते हैं जब मुझे किसी ने बात कही तो मैं बड़ी परेशान हुई मैंने कहा ये कैसे होता है मिसाल है देखिए ना कि अगर मैं हुक्मरान हूँ इस मुल्क की तो मैं तो ये चाहूँगी ना कि मेरे दौर में मुल्क में अमन हो तो मैं खुद क्यों हंगामे कराऊँ कहा इसलिए कि वो कहीं एक हंगामा कराते हैं फिर उसके अंदर लोग थोड़े दिन उलझते हैं तो उतने में वो कोई अपना गबन गुबन करके पीछे हट जाएंगे कि लोगों की तवज्जो अपने से हटाने के लिए अब ये किसी एक के लिए बात नहीं हम कर रहे हैं हमें नहीं पता ऐसा कब है लेकिन ये हकीकत है कि बाज़ दफ़ा अपने ज़ाती मुफादात के लिए मुल्की मुफादात को दाव पर लगाया जाता है इसी तरह क़यामत के करीब ऐसे मुलहिद कौन होते हैं जो दीन से निकल जाए और बेदीन लोग हाकिम बनेंगे जो इंसानी जिस्म में शैतान होंगे अल्लाह अकबर ऐसे हुक्मरान मुसलमानों पर ज़बरदस्ती गैर शरई कवानीन मुसल्लत करेंगे अल्लाह अकबर हज़रत खुज़ैफ़ा बिन जमान रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग आपकी बेसत मुबारक से पहले बुराई में मुब्तला थे अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भलाई अता फरमाई क्या इस खैर और भलाई के बाद दोबारा बुराई आएगी यदि हमने इतना अच्छा दौर आपके साथ देख लिया तो क्या बुरा दौर आएगा आपने इरशाद फरमाया हाँ मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह क्या इस बुराई के बाद फिर खैर होगी आपने इरशाद फरमाया हाँ मैंने अर्ज़ किया कि इस खैर के बाद फिर बुराई आएगी आपने इरशाद फरमाया हाँ मैंने अर्ज़ किया वो कैसे आपने इरशाद फरमाया मेरे बाद ऐसे लोग हाकिम बनेंगे जो मेरी हिदायत के मुताबिक लोगों की रहनुमाई नहीं करेंगे ना ही मेरी सुन्नत पर लोगों को चलाएंगे बल्कि इनमें ऐसे हाकिम भी होंगे जो इंसानी जिस्मों में शैतान के दिल रखते होंगे अब देखिए इस पे मुझे तो कोई कमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है हदीस के लफ्ज़ कितने हैं कि हकीकत में बाज़ दफ़ा कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि उनको देख के कराहत आती है कि कम अज़ कम मुसलमान मुल्कों के वज़ीर और मशीर ऐसे तो नहीं होने चाहिए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इंसान के जिस्म में शैतान का दिल होगा हज़रत हुज़ैफ़ा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह अगर मैं ऐसा वक्त पाऊँ तो क्या करूँ यानी अगर मेरे दौर में ऐसे हुक्मरान आ जाएँ तो क्या करूँ तो आपने फरमाया इन हाकिमों की बात सुन और इताअत कर ख्वाह तेरी पीठ जख्मी कर दें या तेरा माल ले लें बहरहाल इनकी बात सुन और इताअत कर इसे मुस्लिम ने रिवायत किया अब आप यहाँ से ज़रा दीन का मिजाज समझिए अगर हमारे ही करतूतों की वजह से बुरे हुक्मरान भी आ जाएं फिर भी उनकी बात माने जी इस्लाम कम्युनिटी को बहुत मानता है इस्लाम क्या चाहता है कि मुसलमानों की इज्तमाइत ना टूटे हमारा हाल बिल्कुल उलट है पहले बुरे लोगों को हुक्मरान बनाते हैं वो जब आ जाते हैं हमारे होठों से, फिर हम उनको गालियां देते हैं, फिर उनके लतीफे बताते हैं और उनकी बातें नहीं मानते और एजिटेशंस करते हैं। बात बिल्कुल अपोजिट है, तुम पहले ही सोच के हुक्मरान लेके आओ और उसके बाद जब आ जाए तुम मानो। क्यों? कि जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो दुश्मन हंसते हैं। इसलिए एक और हदीस में यहाँ तक आता है कि सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, क्या ऐसे हुक्काम के खिलाफ हम लड़ाई ना करें? तो आपने फरमाया, जब तक वो नमाज पढ़ें इनके खिलाफ लड़ाई ना करो। ये मुस्लिम की रिवायत है। यानी अगर हुक्काम बेनमाज हों तो फिर अच्छे तरीके से हटाने की कोशिश कीजिए, यानी फिर उनको हटवाएं, ना कि उनको हाकिम रखते हुए आप उनकी बात ना माने। इसी असूल को आप छोटा कर लीजिए, अभी तो हुक्मरान है ना। अब इसी तरह आपके कोई बॉसेस, शौहर, कोई ऐसे भी तो छोटे लेवल पे लाते जाएं, तो कभी कभी हमारे ऊपर ऐसे लोग डोमिनेंट होते हैं जो बेदीन होते हैं। तो अब आप दीन पे हैं तो क्या आप अपने बेदीन शौहर की जायज़ बात ना माने? मिसाल दे रही हूँ मैं, कोई फतवा नहीं सोकर दे रही, समझाना ये चाह रही हूँ कि दीन अमन चाहता है। किस तरह से? कि आप इस तरह से उस दीन पे अमल करें कि अगर आपको एहसास होता है कि दूसरा बंदा गलत है तो फिर फैसला कीजिए, फिर आप उस चीज़ को डिसाइड करवाइए कि इसको रखना कि नहीं रखना। मिसाल एक औरत है, अगर वो दीन पे है, 5 वक्त की नमाजी है और सब है, माँ बाप को चाहिए कि शादी से पहले ही देखें कि कैसी जगह पे शादी कर रहे हैं। अब आपकी पढ़ी लिखी समझदार दीनदार बच्ची बास इस्मत, शादी आपने कर दी बाहर के लड़के को देखकर, या कोई भी सोच थी, शादी के बाद पता चलता है लड़का नमाजी नहीं, लड़के के ताल्लुकात हैं, क्या करें? वहीं रुक जाएं, स्टॉप हियर, गिव देम अ चांस, थोड़ा सा मोहलत दें, थोड़ी निगोसिएशन करें, प्यार की बात करें, घर के अच्छे माहौल से करें, एक ख़ास सर्टन टाइम तक उसका ट्रीटमेंट करें। नहीं तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि अगर दोनों अलग हो जाएंगे हम एक दूसरे से गनी कर देंगे। हम हर चीज़ पर रिस्क ले लेते हैं, दीन पर रिस्क नहीं लेते। 20, 25, 30, 30 साल से वो औरतें जो पाक दामन हैं, नमाजी हैं, वो गंदे मर्दों के साथ रहती हैं और फिर उसके मसले आगे नस्लों में चलते हैं। तो लिहाजा बुराई है तो उसको शुरू में बदल दें। और आप भी जब कभी अपने बच्चों के रिश्ते करें तो दीन को देखें, सिर्फ शक्ल का दीन नहीं, उसके अखलाक का दीन। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम्हारे पास ऐसे शख्स का रिश्ता आए बेटी या बहन के लिए कि मन तरदौना दीन हो व खुलूका हो, दो बातें हैं, दीन और अखलाक, तो तुम उनका निकाह कर दो, उस रिश्ते को कबूल कर लो। अगर नहीं करोगे तो फितना होगा दुनिया में, और आज वो फितना हमें घर घर दिख रहा है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। इसी तरह क्यामत से पहले बाज ऐसे जालिम लोग हुक्मरान बनेंगे जो सुबह शाम अल्लाह ताला का गजब मोल लेने वाले काम करेंगे। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, आखिरी जमाने में इस उम्मत पर ऐसे लोग मुसल्लत होंगे जिनके पास गाय की दुमों जैसे कोड़े होंगे। वो लोग अल्लाह के गुस्से में सुबह करेंगे और अल्लाह के गजब में शाम करेंगे। इसे अहमद हाकिम और तबरानी ने रिवायत किया। बाकी अल्लाह के नबी की ये रिवायतें इस बात पर यकीन करती हैं कि अल्लाह के नबी नबी थे। ये बातें आज आम हैं और अल्लाह के नबी को किसने बताई? तो प्यार से दिल में कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, कि वाकई अल्लाह के नबी पर हम दुरूद भेजते हैं कि जिन्होंने हमें आने वाले वक्त की खबरें दे दी। गाय की दुमों जैसे कोड़े, यानी उनके हाथ में हंटर होंगे और जुल्म की दौर पे टॉर्चर सेल्स की अंदर ले जाकर लोगों को तकलीफ देंगे, यानी अच्छे लोगों पे जुल्म करेंगे और बुरे लोगों को छूट देंगे। मुसलमानों पर बाज़ ऐसे जाहिल हाकिम मुसल्लत हो जाएंगे जिनके आमाल मुशरिकों से भी बदतर होंगे। औसबिल्ला हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम पर ऐसे लोग हाकिम बनेंगे जो आतिश परस्तों से भी बदतर होंगे, यानी आग की पूजा करने वालों से भी बुरे हुक्मरान होंगे। तबरानी की रिवायत है, क़यामत से पहले ऐसे मुनाफिक हुक्मरान मुसलमानों पर मुसल्लत होंगे जिनके दिल मुर्दार की बदबू से भी ज़्यादा गलीस होंगे, यानी उनके दिलों में रहम ही नहीं होगा। सरेआम इस्लाम के रिचुअल्स का वो मजाक उड़ाते फिरेंगे। हज़रत काब बिन उजरा रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, मेरे बाद तुम पर ऐसे हुक्मरान हुकूमत करेंगे जो मिंबर पर बड़ी हिकमत से बात करेंगे, यानी स्पीचेस बड़ी खूबसूरत उनकी होंगी, उनके बयानात खिताबात बड़े प्यारे होंगे, और जब मिंबर से उतरेंगे तो अमली ज़िंदगी में इनसे हिकमत छीन ली जाएगी, इनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे। ये तबरानी की रिवायत है। जब वोटिंग होती है, जब अपनी इख्तदार लेना होता है, तो कितनी खूबसूरत बातें होती हैं, और उसके बाद क्या होता है, यह हदीस उसकी वजाहत करती है। قیامت سے پہلے بعض ایسے احمق اور بے وقوف لوگ حکمران بنیں گے جو لوگوں کو سنت رسول کے خلاف احکام دیں گے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعب بن اجرا، اللہ تجھے احمقوں کی حکومت سے اپنی پناہ میں رکھے. حضرت کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احمقوں کی حکومت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ایسے حاکم آئیں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے، نہ ہی میرے طریقے پر عمل کریں گے. جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا، ایسے لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی ایسے عوام میرے حوض پر لائے جائیں گے جو ایسے حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے ظلم پر تعاون کریں گے. ایسے لوگ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. اسے حاکم نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے، ساری روایتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ وہ نااہل حکومت کریں گے اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھے. اگلا فتنہ جس کا سراسر تعلق ہم عام لوگوں سے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ موضوع جس پہ میرا اور آپ کا عمل نہیں، میں اس کو جسٹ ریڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس پہ ہم جتنی بھی بحثیں کریں، اب ادھر میں آپ کے ساتھ ایک آدھا گھنٹہ صرف سیاست پہ بات کر دوں اور فلاں برا، فلاں یہ کر گیا، وہ لوٹ گیا، وہ خزانہ کھا گیا، فرق کیا پڑے گا؟ تو میرا تو ایک لفظ نہیں بولنے کو دل کرتا، اس لیے کہ ان کو چھوڑو، اپنی اصلاح کی فکر کرو. وہ موضوع جس پہ میں اور آپ عمل کرتے ہیں، ہمیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے انشاءاللہ. تو فتنہ تو اتباع الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ. ٹاپک سمجھے؟ یعنی سیمیلیٹ ہونا، ان سے ملتے جلتے کام کرنا، ان جیسے رنگ ڈھنگ، ان جیسا لباس، ان جیسے کپڑے پہننا اور اسی طرح کی چیزیں. کفار کی پیروی کرنے کے معاملے میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. روایت ہے مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی. طبرانی کی روایت ہے، یعنی پچھلی امتوں نے جو برے کام کیے یہ مسلمان بھی کریں گے. قیامت سے پہلے مسلمان عقائد، عقیدے کی جمع، معاشرت، اس کو کہتے ہیں رہن سہن یعنی لائف سٹائل، عادات یعنی ہیبٹس، اور اتوار یعنی طور طریقے آپ کے یعنی مینرز، لباس یعنی ڈریس اپ ہونا، اور اسی طرح تراش خراش، چال ڈھال، رہن سہن. تراش خراش سے سمجھتے ہیں لک، آپ کے بال کیسے کٹے ہیں، فلاں کٹ، فلاں جیسا، فلاں جیسے. چال ڈھال چلنا، کریکٹر. رہن سہن لائیولی ہوڈ، جینا مرنا امریکن سٹائل اور فلان سٹائل، اور جو نام معروف ہو جاتے ہیں بعض اوقات، خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں بعض اوقات اب دیکھیے نان مسلم سے ملنے لگتی ہیں، ہر چیز میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے. حدیث طویل ہے، حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے. اگر وہ ایک بالش چلیں گے، بالش کیا؟ یہ ذرا، یہ ہاتھ ذرا کہتے ہیں، ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، یعنی خوب بخوب وہی کرو گے جو وہ کرتے ہیں. اگر وہ ایک ہاتھ چلے، ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ اب یہ ہے، اس انگلی سے لے کے کونی تک، اس کو عربی زبان میں ہاتھ کہتے ہیں، اتنے لمبے کو. یعنی کہ اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں، یعنی فائر ورشپر اور کرسچنز؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اور کون؟ اسے بخاری نے روایت کیا. اگلی روایت اس کے ساتھ ہی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو تم بھی دو ہاتھ چلو گے، وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ چوہے کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے چھوٹے سے منہ کا، کھو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اور کون؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور اگلی روایت تو اس سے بھی زیادہ دل کو ہلانے والی ہے، مسلمان یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن، تہذیب و تمدن کے کلچر اینڈ آرٹ، اور ان کی مادی ترقی سے اس قدر مرعوب ہوں گے یعنی امپریس ہوں گے کہ اگر وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو مسلمان بھی اپنی ماں سے زنا کرنے پر فخر محسوس کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ایک بالغ چلیں گے تو تم بھی ایک بالغ چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو تم بھی دو ہاتھ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گھو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے، اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ یہ بازار کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں سامنے رکھیے اور آج کے مسلمانوں کا لائف اسٹائل دیکھیے، سچ نہیں لگتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رخصتی ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکالی۔ یہ جو بال ہوتے ہیں نا، حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے بال بھی بناتی تھی، یعنی شوہر بیوی کا تعلق بڑا خوبصورت تعلق ہوتا ہے، اس میں بے تکلفی بھی ہوتی ہے اور لحاظ بھی ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میری مانگ یہ سائڈ سے نکالنے کے بجائے بیچ سے نکال دو، مڈل سے۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، پہلے تو آپ نے کبھی اس سے نہیں روکا؟ تو کہا اس لیے کہ میں نے یہاں آ کے دیکھا کہ یہود سائڈ پہ مانگ نکالتے ہیں، تو میں نہیں پسند کرتا کہ میری مانگ نکالنے کا طریقہ بھی ان جیسا ہو، تو تم ان سے اپوزٹ کرنے کے لیے مڈل میں کر دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کو مدینہ میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہود جو ہیں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ۔ پوچھا کہ تم یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ اس دن فرعون ڈوبا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی موسیٰ کو نجات ملی تھی، تو آپ نے کہا کہ تم سے زیادہ تو ہم موسیٰ سے نسبت رکھتے ہیں، ہم بھی اگلے سال 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن یہود کی مماثلت یعنی سملیرٹی سے بچنے کے لیے ہم اس کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ لگائیں گے یا 11 کا لگائیں گے۔ اب آپ ان ساری باتوں کو سمجھیں اور بتائیے کہ آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں۔ کوئی بات آپ اس میں سے شیئر کریں؟ ہر چیز میں دیکھیے، جہاں جاتے ہیں وہاں کی رسمیں لے کے آ جاتے ہیں۔ ہم انڈیا پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہندوؤں کی ساری رسمیں ہمارے کلچر میں آ جاتی ہیں، جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں تو ہمارے شادی میں کیک بھی کٹنے لگتے ہیں، فلاور گرل بھی بن جاتی ہے۔ ادھر رہتے ہیں تو گود بھرائی کی رسمیں ہوتی ہیں، ادھر آتے ہیں تو بیبی شاور شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں لگتا کہ ہم مسلمانوں کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم ان ساری چیزوں میں پڑھ کر دوسروں کی باتیں ایسے نہیں لگتا مانگتے ہیں؟ بس آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنے کپڑے پہنتے ہیں نا، کوئی ہم میں سے ایسا ہے کہ جو کہے کہ میں کسی کے کپڑے پہن لوں، اور کبھی مجبوراً یا کسی کے کہنے پہ پہن لے تو اچھا ہی نہیں لگتا، دل کو برا لگتا، اور کسی کو پتہ چل جائے کہ اس نے میرے کپڑے پہنے کیسا لگے گا۔ اس کو سمجھیے، دیکھیے یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے سمجھنا، کیونکہ ہم اس کے بغیر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے آج آپ سب آئے ہیں نا ادھر ہی، صرف سمجھانے کے لیے، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس کے کپڑے پہنے ہیں، لیکن مثال ہے۔ اب آپ ایک گھر سے دو لوگ آئے، چلے کریٹیکل رشتہ بول دوں، دیورانی جٹھانی تو نہیں کوئی آپ میں سے، آپ دونوں ہی ہیں، آپ بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اس لیے ورنہ ایسے نہیں بیٹھتی، یہ بہنیں بھی ہیں اور دیورانی جٹھانی بھی ہیں، اور آپ کیا جی؟ دونوں صرف دیورانی جٹھانی ہیں۔ آپ دونوں کیا جی؟ ہر رشتہ ہی خطرناک ہے، آپ دونوں صرف بہنیں ہیں، اور کون ہے کوئی ادھر؟ چلیے اب آپ یہ دیکھیے، مثال دیتے ہیں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، واللہ اگر سچ ہو تو مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ آپ یہاں درس کے لیے آئیں، آپ وقت سے پہلے آ گئیں کہ چلیں ہم باجی بینا کی ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ تیار ہوئیں جلدی سے آ گئیں، بھی بعد میں آپ آنا ٹھیک ہے، آپ یہاں کے بیٹھ گئیں اور درس شروع ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دروازہ کھلا اور آپ کی دیورانی آئی، آپ کہتے ہیں میرا جوڑا پہن کے آ گئی، وہ پیچھے سے آپ کی الماری کھولیں، آپ کا بہترین جوڑا پہن۔ صرف جو بات سمجھانا چاہتی ہوں وہ سمجھ لیں کہ جب کوئی ہمارے کپڑے ہمارے پوچھے بغیر پہن لے تو ہمیں کیسا لگے، اور کیا پھر اس جوڑے سے آپ مروب ہوں گی، آپ جلتی کٹتی رہیں گی کہ میرا جوڑا اس کو کیسا لگ رہا ہے۔ جب غیر مسلم ہم مسلمانوں کو ان کے رنگ ڈنگ میں دیکھتے ہیں تو وہ گھر جا کے ہنستے ہوں گے کہ باتیں کرتے ہوں گے؟ باتیں کرتے ہیں، ہم تو ان کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں نا کہ ہم ان کی نظروں میں جچیں، وہ بعد میں ہنستے ہوں گے، دیکھو ان کے اپنے کپڑے کوئی نہیں، یہ ہمارے کپڑے پہن کے آئے ہیں۔ جب تک مسلم اٹائر کو، مسلم گیٹ اپ کو اپنے لیے آنر نہیں سمجھیں گے، بات نہیں بنے گی۔ اس کے لیے کریں کیا؟ کیونکہ اس کا پھر ہمارے عمل سے تعلق، بچپن سے माइंड सेटिंग करें अपने बच्चों की। जैसे मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ कि घर का माहौल कोई इतना बिगड़ा हुआ तो नहीं था, लेकिन मरूबियत कह ले, शलवार कमीज बच्चों को सिर्फ सोते वक्त पहनानी होती है। घर में कोई मेहमान आ जाए देर से रात को, उस वक्त तक दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक कि वो नाइट सूट बदल के फिर पैंट शर्ट ना बच्चे पहन ले। नतीजा क्या निकला कि वो बच्चा जो बचपन से ये कुछ देख रहा था, उसके लाशौर में तो उससे कभी भी कोई पूछो ये क्या शलवार कमीज, वो कहते नाइट सूट। अब हुआ क्या, जब बच्चे बड़े हुए तो बाहर शलवार कमीज में नहीं जाते। चलिए उनको छोड़ दें, इन मुल्कों में वेस्ट में हम जाते हैं, कितनों के मर्द हैं जो मुस्लिम कपड़े कह लें या पाकिस्तानी कह लें उसमें मॉल्स में जा सकते हैं, नमाजों के लिए चले जाएंगे तो ठीक है वहाँ सारे अपने हैं, ईद की नमाज वाले दिन बड़ा लिशक पुशक एक शेरवानी कुर्ते वाला पजामा पहन ले तो ठीक है, लेकिन अमूमी मर्द औरतों को मैंने देखा है कि वो बाहर जाते हैं ना शलवार कमीज नहीं पहनते। मर्दों को छोड़ दीजिए, सिस्टर्स सीधी सादी औरतें हैं, घरों में साफ आम कपड़े पहनती हैं, वो कभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो तो उस दिन वो ट्राउजर शर्ट पहनेंगी, चाहे उसको खींच के लंबा लंबा कर लें कुछ भी करें, पाकिस्तानी नहीं पहने, क्यों शर्म आती है। तो जब तक हम मुसलमान इस पे फख्र नहीं महसूस करेंगे कि हमारा ऑनर, आपको पता है कि हिस्ट्री में जाके तारीख को पढ़ के देखिए, जब हम मुसलमान गालिब थे ना तो लोग हमसे रोब खाते थे, अरब शहजादों के कपड़ों को क्रिश्चियन शहजादे फख्र से देखते थे, जब ये मुसलमान मुल्कों में सफ़र के लिए जाते तो वहाँ से मुसलमानों के कपड़े ख़रीद के लाते और पहनते। आज भी कभी कोरियों को देखें तो वो अपने मुल्कों की शलवार कमीज़ें पहनती हैं, वो खुश होती हैं, लेकिन हम उनके कपड़ों को पहन के फ़ख्र का सरिया बनता है। तो अंदर से अपना थॉट पैटर्न ठीक कर लें, बाकी सब ठीक है। इस्लाम ने हमें ना तो किसी कल्चर में बांधा है, ना किसी के साथ कोई इस तरह से कर दिया है कि एक डेड लाइन बना दी, लेकिन ये सोच है। मैंने लोगों का मिजाज देखा कि बड़े अच्छे दिन होते हैं ना तो तोहफे देते भी हैं लेते भी हैं, खुदा ना खास्ता उस रिश्ते में कोई बिगाड़ आ जाए या रिश्ता टूट जाए या भाई बहनों में कोई फीक पड़े, जो जोड़े उन्होंने दिए होते हैं ना उसको निकाल के अलग करते हैं, कहते हैं दिल नहीं करता इनको पहनने को, कभी ऐसा हुआ? कहते मैंने नहीं इनके घर के जोड़े पहनने, क्यों? इसलिए कि दिल खट्टे हैं। जब अल्लाह से मोहब्बत होगी और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी तो उनके कपड़े उनका रंग ढंग हमें अच्छा लगेगा, और उसके ऑपोजिट जो है वो तो आज हो ही रहा। कोई सवाल आज के पूरे सेशन में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ है, अगले सेशन में अब हम कुछ ख़ास तौर पे दुआएं भी सीखेंगे, कुछ तो हम आपको साथ साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, याद कर लीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन यह और अगले वीक में इंशाल्लाह हमारी मेजर साइंस शुरू हो रही हैं, दज्जाल और वो बड़ी बड़ी चीज़ें जिसके बारे में हमारे जहनों में बहुत सस्पेंस भी होता है, तो इंशाल्लाह आप फील करेंगे। और कोई बात जी सिस्टर? बहुत अच्छा इनका सवाल है कि किसी जगह अपनी बेटी का रिश्ता करें, यानी कोई अपनी बेटी या अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे लड़के से करे कि लड़का तो दीन पे है लेकिन माँ बाप दीन पे नहीं है, या कम है या बेदीन है, तो क्या वहाँ रिश्ता करें? देखिए, एक है हमारा कल्चर, हमारे कल्चर में शादी के बाद ससुराल की बहुत अहमियत होती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अगर आप अरब कल्चर को देखें तो शादी होती तब है जब लड़का चाहे एक कमरे का अलग घर ले सके, और लड़की शादी के बाद अपने घर में जाती है, ये कल्चरल बात है, मैं इस पे अपना कोई कमेंट नहीं दे रही फिलहाल। लेकिन आप देखिए कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, जो आपका हुक्म है अच्छी तरह समझ लें। अगर लड़के की करेक्टर बिल्डिंग हुई हुई है, स्ट्रांग है, दबने वाला नहीं बल्कि अपनी बात को पेश करने वाला, बिस्मिल्लाह करें। आपकी बच्ची को अगर आपने इस तरह परवान चढ़ाया है कि वो भी उस लड़के के साथ मिलेगी, तो वो हो सकता है बेचारा अकेला था और उसके घर वाले उसकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन अब बीवी भी उस जैसी मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर लड़का ढीला है, वो ऐसे ही डामाडोल सा है, बाद में लड़की को कहते अच्छा जो मेरी अम्मा कहती है वो करो, तो फिर सोचें। और इसका एक बड़ा अच्छा क्राइटेरियन भी है, लड़का है ना जिससे शादी हो रही है, देखें कि उसकी बहन कैसी है, और क्या वो अपनी बहन को रोकता टोकता है ऐसी चीज़ों से दीन के नाम पे, माँ को टोकता है रोकता है? अगर वो उनको कोशिश करता है फिर वो नहीं मानती, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो उनको कोशिश ही नहीं कर रहा तो हो सकता है वो बीवी के मामले में भी ढीला हो। तो छान फटक के बात कर लें और क्लियर कट अपने व्यूज़ को शेयर कर लें कि भाई हमारी बच्ची तो ऐसे रहेगी, कुरान पढ़ती थी तो कुरान पढ़ेगी, ये अबाया का पहनेगी, ये निकाब पहनेगी, और ये सारी चीज़ें रिश्ता होने से पहले सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। ठीक है। और फिर दुआ भी बहुत करें कि अल्लाह हमारी बच्चियों को जिधर ले जाए वहाँ ये उनके भी दीन में इजाफे का जरिया बने और इनका अपना भी ईमान बढ़े। होता क्या है कि कच्चा रंग होता है फ़ौरन ही उतरने लगता है, थोड़ा सा रंग चढ़ता है कुरान का भी शादियाँ हो जाती हैं, और अल्लाह ना करे लड़के अगर थोड़े से इस तरह के या माहौल ऐसे हो जाए तो हमारे तो कल्चर में ये आम बात है जी कि अब्बा के घर से बुरका पहन के आए थे फिर ससुराल में आके सब छोड़ दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, तरबियत अच्छी करें। नेक्स्ट वीक हम कुछ दुआएं भी सीखेंगे फितनों के बारे में और साथ ही साथ अब अलामातें कुबरा भी शुरू हो जाएंगी अल्लाह की तौफीक से जी। और अभी जो हम बुक पढ़ेंगे इसमें अगले टॉपिक में ये सारी दुआएं आ रही हैं, अगर आप सबको दिखा दूं कि जो बुक्स में हम दुआएं कर रहे हैं तो इसी में आपकी बुक के अंदर ये दुआओं का टॉपिक आ रहा है इंशाल्लाह, आप उससे फ़ायदा उठा। ये देखिए फितनों से पनाह मांगने की दुआएं पेज नंबर 100 है इसी बुक 160 सॉरी। तो इससे जाके आप एक एक दो दो याद कीजिए, यही दुआएं हम आप लोगों को शुरू के सेशन में याद करवा रहे हैं, ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अस्तुर अवरातिना व आमिर अवातिना। اللهم الهمني رشدي وعزني من شر نفسي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده। हमारी सब की इस छोटी सी कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जितने फितनों का तस्करा हमने पढ़ा और जिसको हम नहीं भी पढ़ सके अभी तक, या अल्लाह हमें उन सब से महफूज रख। हमारी आने वाली नस्लों को इन तमाम फितनों से बचा के रखना। या अल्लाह इन सब बहनों के दिलों की जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा। हमारे जो साथी यहाँ से घरों से ऑनलाइन किसी भी मीडियम से अब सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, या अल्लाह उनके दिलों की नेक हाजात पूरी फरमा। या अल्लाह हमें दीन के फितनों से बचाना। अल्लाह इस दुनिया को हमारे लिए आजमाइश की जगह न बनाना। या अल्लाह जो कुछ सलाहियतें तूने हमें दी, या अल्लाह वो सब तेरे रास्ते में लग जाएं। या अल्लाह इस घर पे अपनी रहमतों की बरकत कर। या अल्लाह इनके ऊपर, इनके बच्चों पे, इनके शौहर के घर वालों पे अपनी रहमतें कर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन।